أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. آج انشاءاللہ ایک خلاصہ بھیج رہی ہوں میں آپ کو، اور سورہ البقرہ پڑھاتے ہوئے ہمیں یہ فیل ہوا ہے کہ اس کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک مربوط اور مضبوط تعلق میں جڑے ہوئے ہیں، اور وہ حصے سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب ایک حصہ مکمل ہو تو اس کا ایک خلاصہ بھیج دیا جائے. ابھی تک جو سورہ البقرہ کی آیات، جو حصہ آپ کو بھیجا گیا ہے، وہ چار بڑے سبجیکٹس پر ہے. جب سورت شروع ہوتی ہے الف لام میم سے، تو اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے گروہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، کوئی خلجان نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ہدل للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی فریب نہیں ہے. ہدل للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی کتاب کے شروع ہوتے ہی، جیسے ایک کورس کے شروع ہوتے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے، مطلب سی ایس ایس کا کورس وہ لوگ کریں جو یہ ڈگریز حاصل کر چکے ہیں، میڈیکل کا کورس یہ لوگ کریں جنہوں نے یہ امتحان پاس کر لیا ہے، انجینئرنگ کی ڈگری اب ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے یہ 4 سال کی سٹڈی پوری کر لی ہے اور اب یہ آگے ایک ماسٹرز کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جب ہم ایک کورس ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو اس کورس میں ہم دیتے ہیں وہ ہے پری ریکوزٹس، یا ریکوزٹ نالج اس کو کہا جاتا ہے، یا وہ معلومات اور وہ بیس جو اس کورس کے لیے ضروری ہے، اور جس کو سمجھے بغیر یا جس کو حاصل کیے بغیر اس کورس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کورس کیا ہی نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے شروع میں یہ البقرہ کی دوسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ہدل للمتقین. پھر آپ کو تقویٰ کا پورا ایک سیشن بھیجا گیا تھا کہ تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کی جامع تعریف کیا ہے، مجھے مطلب کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا ریسرچ کر کے میں نے آپ کو بھیجا. اب ہدل للمتقین کہہ کے اللہ تعالیٰ آگے 5 صفات بتاتا ہے، یعنی کہ قرآن کے شروع میں ہی قاری کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر یہ 5 صفات آپ میں ہیں تو یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت ہے. یہ وہی ہدایت ہے جس کے لیے آپ نے الفاتحہ میں دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تبھی یہ قرآن آپ کے لیے وہ صراط مستقیم بنے گا جو اس کا مقصد ہے، اور جو اللہ اپنے اس بندے سے چاہتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں کہتا ہے الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور غیب ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یعنی کہ اگر میں صرف غیب آپ کو پڑھانا شروع کر دوں تو وہ تو ایک الگ کورس بن جائے گا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت تھوڑے الفاظ میں یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، بغیر اس کو کھوجے، اللہ کی ذات، قیامت، فرشتے، کتابیں، یہ پوری کائنات، کیا ہم نے کبھی دیکھی ہے یہ کائنات؟ یعنی کہ ہم تو جس آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس آنکھ سے ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں، ہم تو اس آنکھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. کیا آپ یہاں بیٹھے ہوئے اپنی آنکھ کو دیکھ سکتے ہیں؟ جس کان سے آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، آپ تو اس کان کو بھی نہیں دیکھ سکتے یہاں بیٹھے ہوئے. آپ کو اٹھ کے ایک آئینے کے سامنے جانا پڑے گا اور اس کے سامنے اپنا کان رکھنا پڑے گا، لیکن آپ اپنی سماعت کو پھر بھی نہیں دیکھ سکتے، سننے کی طاقت کو آپ پھر بھی نہیں دیکھ سکتے. ہم کیسے سن رہے ہیں؟ ہواؤں میں یہ لہریں آ رہی ہیں اور یہ ہمارے کان میں جا رہی ہیں اور ایک پردے سے ٹکرا رہی ہیں، اور وہ پردہ ہل رہا ہے، اور اس کے ہلنے سے مختلف نروس جو ہیں وہ ہمارے دماغ کو ایک پیغام دے رہی ہیں، اور ہم یہ الفاظ سن رہے ہیں. और ना सिर्फ हम ये अल्फाज सुन रहे हैं, हम इन्हें समझ रहे हैं, ना सिर्फ हम इन्हें समझ रहे हैं, हम इनके बारे में सोच रहे हैं और हम इन पर अमल करने की ताकत रखते हैं। ये सारे उमूर हमारे लिए इस वक्त इस एक लम्हे में गैब हैं। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सहाबा, बीबियां, क्या हमने इन्हें कभी देखा है? लेकिन इन पर ईमान, और ईमान का क्या मतलब है? बहुत सिंपल तीन अल्फाज याद रखें, मान लेना, अमन में आ जाना और उसके सामने अपनी मर्जी को ख़त्म कर देना। यानी जिस चीज़ पे आप ईमान ले आते हैं फिर वो चीज़ आपकी रज़ा बन जाती है, फिर आपकी अपनी रज़ा और अपना नफ्स और अपनी ईगो और अपनी ख्वाहिश और अपनी आरजुएं, उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। ये ईमान का खुलासा है, मान लेना, और जब मान लिया है तो अमन में आ जाना, अमन महसूस करना। और जब एक चीज़ को मान के आप अमन में आ गए हैं तो उससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? तो ये जो कुरान से हिदायत हासिल करने वाला मुत्तकी है, सबसे पहले तो इसका ये ईमान है कि एक, यानी कि उसकी हैसियत एक एटम की भी नहीं है, एक खलिये की भी नहीं है, वो तो एक समंदर में है और जो समंदर उसे नहीं नज़र आ रहा। और इसका फ़ायदा क्या है? कि जो सिर्फ अपनी ज़ात से और अपने नफ्स से अलग हो के एक ऐसी गैर मरई, एक अनदेखी ताकत के साथ जुड़ गया जो कुछ भी कर सकती है, वो ताकत कुरान में कि उसकी तो जो रज़ा, उसकी तो जो मंशा होती है, वो कहता है कुन, तो वो हो जाता है। अगर एक ऐसी ताकत पे ईमान लाते हैं हम और उसके सामने हम अपनी इन छोटी छोटी और टेढ़ी मेढ़ी आरजुओं का और ख्वाहिशों का और अपनी प्रेफरेंसेस का और अपनी प्रायोरिटीज का एक की एक कुर्बानी दे देते हैं, तो क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं है? युमिनून बिलगैब, और जब वो गैब पे ईमान ले आते हैं, वह यकीमून सलात, तो फिर वो नमाज कायम करते हैं। जब गैब पे उनका ईमान होता है तो उस अनदेखे अल्लाह के लिए नमाज कायम करना, उसके सामने दुआ करना, उसके सामने झुकना, उसके सामने सजदा करना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती, उनको नमाज का मगज़ समझ आ जाता है। और जब वो उस अनदेखे अल्लाह के सामने, उस अनदेखे रसूल की सुन्नत के मुताबिक झुक जाते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, तो जो हमने उन्हें रिस्क दिया है, जो हमने उन्हें दिया है, उसमें से वो खर्च करते हैं, हमारी ही राह में खर्च करते हैं, हमारे ही कामों पर खर्च करते हैं। एक बात जो मैंने आपको यहाँ नहीं बताई थी, थोड़ी ज़रा तफसील में मैं इस आयत की गई हूँ, वो नफ़ाका की रूट तो मैंने आपको समझा दी थी कि इसका मतलब है सुरंग, सुरंग यानी इंग्लिश में टनल, जिसके दो मुंह होते हैं। आप कभी ये आपने सोचा है कि जैसे आपके हाथ में एक पाइप है जिसके दो सिरे हैं, जब वो पाइप आप नलके के साथ अटैच करते हैं और पानी खोलते हैं तो सारा पानी पाइप में से गुजर जाता है। अल्लाह की राह में इन्फाक करने की मिसाल यही है, कुछ ना रखा जाए, सब कुछ गुजार दिया जाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और जो लोग उस पर ईमान लाते हैं जो तेरी तरफ नाजिल किया ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तेरी तरफ नाजिल किया का मतलब ये है कि अगर वो ये ईमान लाते हैं कि तेरी तरफ कुरान उतारा गया है तो वो तो तुझ पर ईमान ले आए, ये तो ऑटोमेटिक है। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले आया है, तौरात आई है, इंजील आई है, ज़बूर आई है, 124,000 पैगम्बर आए हैं, सहीफ़े आए हैं, वो हर चीज़ पर, क्योंकि ये सब गैब है, ईमान ले आते हैं। हाँ, ईमान तो इन सब चीज़ों पे वो ले आते हैं, लेकिन एक यकीन, हम एक यकीन का तकाजा हम उनसे करते हैं, और वो यकीन क्या है? वो बिल आखिरत हुम युकिनून, और हाँ, आखिरत पर फिर उनका मुकम्मल यकीन होता है। यकीन क्यों हो? ईमान और यकीन में क्या फ़र्क है? यकीन वो चीज़ है, देखें, एक चीज़ होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है नॉलेज। इन्फॉर्मेशन हमें बहुत चीज़ों की होती है, लेकिन एक चीज को अंदर ले जाके प्रोसेस करके उसको इस काबिल बना देना कि हम उस पर अमल करें, हम उसके मुताबिक अमल करें, वो यकीन है। आखिरत का यकीन हमें कैसे है? यकीन तो उस चीज़ का होता है जो हमने देखी हुई होती है। तो ये जो मुत्तकी जिसका जिक्र यहाँ पहली 3-4 आयात में अल्लाह ने कर दिया है, ये मुत्तकी वो मोमिन है जो हर अमल ऐसे करता है गोया उसने आखिरत देखी हुई है, उसको आखिरत का, उसके सवाल जवाब का, उसकी पूछ गछ का ऐसा ही यकीन होता है जैसे किसी देखे हुए इम्तिहान का और उसके रिजल्ट का होता है। फिर अल्लाह एक बशारत देता है, उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं उनके रब की तरफ से, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग फलाह हमेशा की कामयाबी पाने वाले हैं। ये पहली 5 आयात जो हैं ये मुत्तकीन की तारीफ हैं, और कुरान में यानी चंद जगहों पर मुत्तकीन की खसूसियात बयान हुई हैं, लेकिन इससे सिंपल अल्फाज में, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही जामे, लेकिन इससे ज़्यादा सिंपल अल्फाज में कहीं पर मुत्तकी की तारीफ नहीं है। अभी जो पहला हिस्सा है अलबकरा का जो मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, इसमें 3 ग्रोहों का बयान है, और पहला ग्रोह अभी मैंने आपके सामने बयान कर दिया, ये मुत्तकीन का ग्रोह है। दूसरा ग्रोह कौन है? इन्नल्लज़ीना, हाँ बेशक वो लोग, यानी ये एक अलग ग्रोह है, रहे वो लोग कफरू, जिन्होंने इनकार किया, सुनते ही इनकार किया। ये कुरान और ये हाँ हदीस पर ठीक बातें हैं, लेकिन आजकल की ज़िंदगी बड़ी ऑब्जेक्टिव हो गई है, ये बात आपने बहुत जगह सुनी होगी। तो जिन्होंने इनकार किया, और इनकार की बहुत सी सूरतें हैं, जी हाँ हमारा ईमान तो है लेकिन हमें अमल करना बड़ा मुश्किल है। कुरान के हुकूक में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जब तक वो हुकूक मुकम्मल नहीं होंगे कुरान का हक अदा नहीं हो सकता। जिन्होंने इनकार किया तो बराबर है उन पर, अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। ये उन लोगों की कोई खसूसियत अल्लाह नहीं बयान कर रहा, अल्लाह यहाँ दावा कर रहा है। देखें कुरान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये तसल्ली की आयत है, ये बशारत है, ये इंज़ार है, ये क़यामत का बयान है, ये जहन्नम का बयान है। ये जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है ना, इसको दावा कहते हैं। बेशक वो लोग, रह गए वो लोग जिन्होंने इनकार किया, तो बराबर है उन पर, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये अल्लाह का दावा है। हिदायत को सुनते ही उसके सामने तावीलें पेश करना, एक्सक्यूज़ पेश करना, अपनी मजबूरियां पेश करना, बहाने बनाना, बातें तराशना, इससे अल्लाह ताला इंसान को हिदायत से दूर कर देता है। वो हिदायत सुनने के काबिल नहीं रहता। क्यों? क्यों अल्लाह के आगे क्या कह रहा है? ख़त्म अल्लाह, अल्लाह ने मोहर लगा दी है, अला कुलूबहिम, इनके दिलों पर, व अला समाइहिम, और इनकी समाअत पर, व अला अबसारिहिम गिशावा, और इनकी आँखों पर पर्दे हैं, इनके सामने क्या कुछ हो जाता है। वही हदीस के तुम कब्रिस्तान पे से गुजरते हुए जिस मौत की तुम्हें याद नहीं आती, तुम फिर भी हंसते हो। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। तो अल्लाह जब मोहर लगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा इनके कान बंद हो जाते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं और फिर इनके दिल पे मोहर लग जाती है। पहले दिल पे मोहर लगती है, इनकार की वजह से दिल पे मोहर लग जाती है और फिर वो इंसान हिदायत सुनने के काबिल नहीं रहता। ये दूसरा ग्रोह है। और अब तीसरा ग्रोह है जो डिटेल में पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा, वमिन अन्नास मन यकूल आमन्ना बिल्लाह, और वो लोग जो कहते हैं, लोगों में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान लाए, वबिल यौमिल आखिर, और आखरत पे ईमान लाए। देखें पहले यकीन बताया था ना मुत्तकियों की खसूसियत, ये कहते हैं कि हम आखरत का भी ईमान है, वमा हुम बिमुमिनीन, और ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। यकूलु मुंह से कहते हैं, ईमान मुंह की बात नहीं है, दिल का ईमान कुछ और है। ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? युखादिउन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देते हैं, वल्लज़ीन आमनु, और जो ईमान लाए, वमा यखदऊन, और नहीं ये धोखा देते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपनी जानों को, वमा हुम यशऊरून, और ये शऊर नहीं रखते। शऊर की पूरी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, हिदायत के दर्जे पढ़ाए थे, उम्मीद है आपको याद होंगे। यहाँ पे चूंकि मैं खुलासा बता रही हूँ, तो शऊर वो बेसिक शऊर है जो एक जानवर को भी होता है, लेकिन जो लोग अल्लाह को धोखा देने का सोच सकते हैं वो तो गोया उन जानवरों से भी गए गुजरे हैं जो शऊर रखते हैं। ये लोग तो शऊर भी नहीं रखते। और फी कुलूबिहिम मरज़, इनके दिलों में मरज़ है। पहली दफ़ा कुरान में मुनाफ़िकत का मर्ज़ बताया जा रहा है, उसकी अलामात, उसकी डायग्नोसिस, और जो हम मेडिकल में कहते हैं उसकी प्रोग्नोसिस के मुनाफ़िकों के साथ क्या होता है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, बस मज़ीद कर दिया अल्लाह ने उनका मर्ज़, अल्लाह ने बढ़ा दिया उनका मर्ज़, अल्लाह ने बढ़ा दिया। पहली दफ़ा उन्होंने निफाक को, निफाक के मर्ज़ को अपने दिल में जगह दी। इख्तियारी तौर पे उन्होंने हिदायत का इनकार किया, दिलों में मर्ज़ को इनवाइट किया, तो अल्लाह ने वो मर्ज़ उसमें से ख़त्म नहीं करना। अल्लाह ने अपने बंदे के दिल को खुरच के ज़बरदस्ती साफ़ नहीं करना। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो बढ़ा दिया अल्लाह ने उनका मर्ज़। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्यों? बिमा कानू यकज़िबून, बसबब उस झूठ के, बसबब उस झुठलाने के जो इनका शेवा बन गया है। बहुत बड़ी बहस है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मुनाफ़िकत का, और यहाँ पे जिस कदर जामे और ख़ूबसूरत अल्फाज में बताया गया है, ये अल्लाह की शान है, इंसान ऐसे नहीं बता सकता। झूठा आदमी जो है, एक झूठ बोलने से इंसान के लिए जो झूठ का दरवाज़ा खुल जाता है और जो पस्ती की वादी में और घाटियों में वो गिर पड़ता है, यहाँ पे अल्लाह ने उसको अज़ाबे अलीम कहा है। वो एक दर्दनाक अजाब में है। सबसे दर्दनाक अजाब तो ये है कि वो खुद से झूठ बोलता है, वो अपने ऐब को ठीक करने के काबिल नहीं रहता। और क्या होता है, अपनी जात तो उनकी अजाबे अलीम में मुब्तला हो गई, और वो समझते हैं कि वो अल्लाह को और उसके बंदों को धोखा दे रहे हैं। फिर इज्तिमाई बिहेवियर इन लोगों का कैसा होता है। वाइज़ा क़ील लहुम, और जब इन्हें कहा जाता है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, ज़मीन में फसाद ना करो, ज़ाहिर है झूठ बोलते हैं, झूठलाते हैं, फसादी तो ये होते हैं, इज्तिमाई किरदार तो इनका फसादियों का ही होता है। वाइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू, ये कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम ही तो इसलाह करने वाले हैं। ले, हम तो इनको सच्ची बात बता रहे हैं, हम तो इनको ठीक रास्ता बता रहे हैं, हम तो इनको कह रहे हैं कि लोगों की बातों से कैसे बचना है, लोगों के तानों से कैसे बचना है, लोगों के सामने अपनी टोर कैसे दिखानी है, लोगों के सामने अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है। हम तो इनको जमहूरियत पढ़ा रहे हैं, हम तो इनको सच्चाई का पैगाम दे रहे हैं, हम तो इनको फ़ायदे बता रहे हैं, इनके अपने फ़ायदे बता रहे हैं, हम तो इसलाह कर रहे हैं। अला, सुन रखो, खबरदार, कान खोल कर सुन लो, इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदूना, बेशक वो लोग वो ही फासिद हैं, वो ही फसाद करने वाले हैं। वलाकिल्ला यशऊरून, लेकिन शऊर नहीं रखते। वही बात है, ये तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं, नहीं क्या पता है, जानवर को भी पता है। क्या देखें, इंसान किस कदर गिर गया है, किस कदर इंसान असफल दर्जे में गिर गया है, ये हम जिन्स परस्त बन गया है। सुअर वाहिद एक ऐसा जानवर है जो अपनी माँ के साथ जना करता है, ठीक है जी। फिर कुत्ता शऊर नहीं रखता। तो यहाँ पे मुनाफ़िकों को उनसे भी गया गुजरा बताया जा रहा है। अला, ये खुद फसाद करने वाले हैं, और फसाद जो है ये इस्लाह की जिद है। कुरान में जगह जगह है वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, तो फसादी जो हैं ये उस अमल सालेह के खिलाफ अमल करने वाले लोग हैं। और जब इन्हें कहा जाता है वैज़ा क़ील लहुम आमिनू, ईमान ले आओ, कमा आमन अन्नास, जैसे लोग ईमान लाए हैं, कालू, ये कहते हैं अनुमिनू, क्या हम ईमान लाए, कमा आमन सुफहा, जैसे ये बेवकूफ़ ईमान लाए हैं, यानी मासूम ईमानदार लोग इन्हें बेवकूफ़ नज़र आते हैं, सिफारिश ना करने वाले इन्हें बेवकूफ़ नज़र आते हैं, रिश्वत ना देने वाले इनको बेवकूफ़ नज़र आते हैं। अला, खबरदार, इन्नहुम हुमुस्सुफहा, ये खुद ही सफ़ी हैं, मदहोश हैं, बेवकूफ़ हैं। वलाकिल्ला यालमून, लेकिन ये इलम नहीं रखते। हाँ, ईमान जो है ये इलम से आता है। फिर एक और इनकी क्वालिटी, वह इज़ा लकुल लजीना आमनू, जब ये ईमान वालों से मिलते हैं, कालू, ये कहते हैं आमन्ना, हम तो ईमान लाए, वह इज़ा खला उला शयातीनहिम, और जब ये अपने शैतानों के साथ, अपने नफ्स के साथ, सबसे बड़ा शैतान, शयातीनहिम कहा गया है, कोई बाहर का शैतान नहीं है, अपने शैतान, इनके अपने नफ्स, इनकी अना, इनके वो, इनके हामी जो इनकी खुशामदें करते हैं, इनके पैर दबाते हैं, इनके ख़ानदान वाले, इनके दोस्त, इनकी सियासी पार्टियाँ, इनकी मज़हबी जमातें, जब ये उनके साथ अकेले होते हैं, कालू, ये कहते हैं इन्ना माकुम, चाहे वो जैसे भी हों, उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हर बात पे हम तो मजाक कर रहे थे, अच्छा आपको हमारी बात बुरी लगी, सॉरी हम तो मजाक कर रहे थे, ये मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह मजाक करता है इनके साथ, और अल्लाह क्या मजाक करता है, ये पढ़ के हैरत होती है कि अल्लाह क्या मजाक करेगा, वयमुद्दुहुम फी तुगयानिहिम, और बढ़ाता है इनको इनकी सरकशी में, यअमहून, ये अंधे हो रहे हैं। अल्लाह फिर ऐसा वैसा इस्तेहज़ा तो नहीं करता ना, अल्लाह दिलों पर मोहर लगा के धक्का दे देता है कि जाओ जहाँ तुम्हें जाना है, तुम्हारे लिए सिराते मुस्तकीम नहीं है। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, अश्तरवुज़्ज़लालत बिलहुदा, इन्होंने हिदायत को छोड़ के गुमराही मोल ले ली है, फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाना इनकी इस तिजारत ने, वमा कानू मुहतदीन, और ये हिदायत पाने वाले नहीं हैं। ये तीन ग्रोह आपके लिए बयान हो गए, ठीक है जी। अब इन तीन ग्रोहों को बयान करने के बाद कुरान सुनने वाले तमाम इंसानियत में हमेशा कयामत तक तीन ग्रोह रहेंगे, एक मुत्तकी हैं जिनके लिए ये सरासर हिदायत है, दूसरे काफिर हैं, इनकार करने वाले हैं, जिन्हें इसकी समझ नहीं आनी और उनके दिलों पे मोहर लग जानी है, तीसरे वो हैं जो चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, चढ़ते सूरज की पूजा, कुरान की महफिल में बैठे हैं वहाँ भी सर धुन रहे हैं, रो रहे हैं, आ हा हा हा, वाह 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 वाह, किरतें सुन रहे हैं, किरतों के मुकाबले कर रहे हैं, ये वो, उन्हें समझ नहीं आनी इस किताब की, क्यों? क्योंकि वो मुनाफिक हैं, उनके दिलों में मर्ज़ है, फसादी हैं, इस्लाह नहीं करते, और वो ये समझते हैं कि वो नाउज़ बिल्ला अल्लाह को और ईमान वालों को बेवकूफ़ बना देंगे, यानी वो उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। अब अल्लाह दो मिसालें देता है, तीन ग्रोहों के बयान के बाद दो मिसालें हैं। मसलहुम कमसलिल्लज़ी अस्तौक़द नारा, ये वो वाली मिसाल है कि इनकी मिसाल उन लोगों की है, उस शख्स की है जिसने एक आग, एक अलाव जलाया, एक आग जलाई, जब वो माहौल उससे रोशन हो गया तो अल्लाह ने उनकी आँखों की रोशनी, उनकी बीनाई छीन ली और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। तो एक शख्स आया, एक नेक शख्स आया, और तफसीरों में ये कहा गया है कि ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये कोई भी नेक शख्स है कि उसने एक आग जलाई, जब माहौल रोशन हो गया हिदायत के नूर से, तो इनकार करने वालों का अल्लाह ने उनकी बीनाई छीन ली और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया, चाहे उनके इर्द गिर्द माहौल रोशन हो, उन्हें कुछ नहीं नज़र आता। क्यों? सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिउन, तो ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, और ये गूंगे हैं, बहरे हैं और अंधे हैं, और इन्हें ये लौट कर नहीं आएंगे, इन पे मोहर लग चुकी है। दूसरी मिसाल बड़ी ज़बरदस्त है, ये मुनाफ़िकों की है, पहली मिसाल इनकारियों की है, दूसरी मिसाल मुनाफ़िकों की है, ये वो आसमान से बरसता हुआ पानी है, औ कस्वय्यिबिन मिनस समाए, जो आसमान से पानी बरस रहा है, फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क, और इसमें अंधेरे हैं और बिजली की कड़क है और बिजलियाँ हैं, तजअलूना यजअलूना अस्वाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, वो अपने कानों में अपनी उंगलियाँ डाल लेते हैं, मिनस सवाइक़ उस कड़क से, हज़रल मौत, मौत से डरते हैं, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह तो काफिरों को घेरे हुए है। तो ये मिसाल उस एक शख्स की है या चंद लोगों की है जो एक ऐसे तूफान में घिर गए हैं जिसमें आसमानी बिजली गिर रही है और कड़क है और बारिश है, और फिर करीब है कि वो बिजली उनकी बीनाई को चुक कर ले जाए, उसको उचक कर ले जाए, और जब उन पर बिजली कड़कती है और इर्द गिर्द एक रोशनी होती है, तो वो चल पड़ते हैं, मशाउफी है। वह इज़ा अज़लमा अलैहिम, और जब अंधेरा आता है इन पर, कामू, वो रुक जाते हैं। वलौ शा अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हबा, वो छीन कर उचक कर ले जाता, बिसमइहिम व अबसारिहिम, उनकी समात और उनकी बसारत। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो ये मुनाफिक जो हैं, ये मिसाल जो है, ये उस मुज़ब्ज़ब मुनाफिक की है जो तज़ब्ज़ब में, कन्फ्यूजन में खड़ा है कि आया ये हिदायत मुझे अडॉप्ट कर भी लेनी चाहिए या नहीं, ये बातें मुझे अप्लाई भी करती हैं या नहीं, कौन सा रास्ता चुनूं। दीन और दुनिया में वो कन्फ्यूज़ है, हालांकि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही रास्ता है। तो ये जो शख्स है, इस पर जब रोशनी होती है, जब आसमानी बिजली आती है और इसको सामने से छोटी सी कोई पगडंडी नज़र आती है, उस पर चल पड़ता है। हाँ, जब अंधेरा होता है तो ये वहीं पे थम के खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई रोशनी नहीं होती, इसके अंदर हिदायत का नूर नहीं है कि ये उस अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ ले। अब ये खूबसूरत मिसालें देने के बाद, और इन अल्लाह अला कुल शैइन क़दीर कहने के बाद, अल्लाह ताला आयत नंबर 21 में, 21 और 22 जो है ना, ये सूरह अल बकरा की, यानी कि वो एक सब्जेक्ट अब ख़त्म हो गया। कुरान शुरू हुआ अलिफ लाम मीम, या सूरह अल बकरा की शुरू में अलिफ लाम मीम, ये किताब किसके लिए हिदायत है? मुत्तकियों के लिए। जिसने इसका इनकार किया उस पर मोहर लग जाएगी। जो इसके बारे में शक में रहा, मुज़ब्ज़ब रहा, जिसने मुनाफ़क़त का रास्ता इख्तियार किया, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है, क्योंकि वो ना वो झूठा है और वो झुठलाता है। और फिर दो मिसालें आ गईं, और उसके बाद अल्लाह ताला एक दावा करता है, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, तो फिर ए लोगो, अपने रब की के बंदे बन जाओ, उसके ग़ुलाम बन जाओ। अल्लज़ी खलक़कुम, वो ज़ात जिसने तुम्हें बनाया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो लोग तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है कुरान का, जहाँ पे अल्लाह ताला ने शुरू में कहा हुदल लिल मुत्तकीन, और यहाँ पे जब दावा किया तो यही कहा अल्लाह ने, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अपने अल्लाह के बंदे बन जाओ। अच्छा, मुत्तकी बनना तुम्हें मुश्किल लगता है ना, ओह इतनी ज़्यादा इबादत और रियाजत कौन करेगा, इतना ज़्यादा ये, इतनी मेहनत कौन करेगा, मुत्तकी तो बड़े स्पेशल लोग होते हैं। तो ए लोगों, या अय्युहन नास, कहा अल्लाह ने, उबुदू रब्बकुम, अपने रब के बंदे बन जाओ, बस ये वो ज़ात है जिसने तुम्हें भी बनाया और जो तुमसे पहले आए हैं उन्हें भी बनाया, बस तुम्हें तक़वा आ जाएगा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के ग़ुलाम बन जाओ, ऐसे ग़ुलाम जैसे तुम अपने ग़ुलामों से एक्सपेक्ट करते हो, तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हारे सलाम करेंगे, तुम जब आओगे तो तुम्हारे जूते उठा के रखेंगे, तुम्हारा घर साफ रखेंगे, तुम्हारे और लोगों का ख्याल रखेंगे, अहलो आयाल का ख्याल रखेंगे, ऐसा बंदा बन जाओ अल्लाह का, तक़वा खुद ही आ जाएगा। हाँ, ये वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को एक फ़र्श बनाया, आसमान को एक छत बनाया, और उसने उसमें से पानी उतारा, और फिर उसमें से फल पौधे पैदा हुए। इतना कुछ जब तुम सोचते हो, इतना कुछ जब तुम्हें नज़र आता है, ये ज़मीन, ये आसमान, ये बारिश, ये पौधे, ये समर, ये फल फूल, जो तुम्हारे लिए रिस्क हैं, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, ये तौहीद का चैप्टर है अल-बकरा का, तो अल्लाह कहता है तो फिर तुम अल्लाह के शरीक ना बनाओ। वह अंतुम तालमून, तुम्हें तो इलम है, इतना ही इलम बहुत है तुम्हारे लिए, इस ज़मीन को देखो और आसमान को देखो और बारिश को देखो, समर को देखो, फल फूलों को देखो, अपने रिस्क को देखो, बस इतना इलम काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम अल्लाह के शरीक बनाते हो, तुम अल्लाह के पार्टनर्स बनाते हो। तो जो लोग इनकार करते हैं, जो कुफर, ये अब देखें सूरत का कनेक्शन आप समझें, साइक्लिक वापस मुत्तकियों पे चला गया ना। अगली आयत जो है 22, ये फिर उन लोगों के लिए है जो इनकार करते हैं। तो अल्लाह कहता है कि इस ज़मीन को ही देख लो, खामा खा तुम इनकारी बन रहे हो यार। तीसरी जो इसके बाद वाली आयत है 23, ये उन मुज़ब्ज़ब लोगों के लिए है, जिन पर जब बिजली कड़कती है और उन्हें रास्ता नज़र आता है तो उस पर चल पड़ते हैं, लेकिन इस हिदायत को वो एक्सेप्ट करके और अप्लाई नहीं करते, इस पे अमल नहीं करते, इसको अपनी तरजीह नहीं बनाते, ये हम जैसे लोग हैं। अल्लाह फरमाता है वइन कुन तुम फी रैबिन, और अगर तुम किसी शक में हो। देखो हमने तो शुरू में कह दिया ज़ालिकल किताब ला रैब फी, और अगर तुम किसी शक में हो, मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, जो हमने अपने एक बंदे पे नाजिल किया, फातू भी सूरत में मिसली, तो ये अब ये दावा है, ये अल्लाह का दावा है। जैसे या अयुहन नासु उबुदू ये था, फिर था फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, फिर ये दावा था, फिर ये है कि फातू बिसूरत में मिसली, तो इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। वदउ शुहदाकुम, और बुला लो अपने बाकी भाई बंदों को भी जो तुम्हारे सिरों बातों पे सर धुनते हैं, जब तुम ये कहते हो कि कुरान जो है ये गौतम बुद्ध की तालीमात पर मबनी है। ऐसे बहुत से लोगों से मैं मिली हूँ, सॉरी मैं पर्सनल बात कभी भी नहीं करती, लेकिन यकीन करें इससे ज़्यादा मेरा कभी अपना सर पीटने को दिल नहीं चाहा, जब मैंने ये सुना कि कुरान जो है ये गौतम बुद्ध की तालीमात हैं। यकीन करें हम मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुद्धिस्ट थे। मैं ये नहीं कहती कि वो बुद्धिस्ट शायद नहीं थे, लेकिन गौतम बुद्ध की जो अच्छी तालीमात हैं वो तो हर अच्छे इंसान में पाई जाती हैं। अब ये कहना कि वो बजाय खुद बुद्धिस्ट थे, इस हद तक लोग चले जाते हैं, और ये इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, इंतहाई ग्लोब टॉटर दुनिया में फिरे हुए लोग हैं, और वो ये बातें हैं उनकी, तो यानी सर पीटने को तो दिल चाहेगा ना। अल्लाह कहता है ऐसी एक सूरत बना के ले आओ, चलो ठीक है देखते हैं, गौतम बुद्ध ने तो नहीं बनाई थी, तुम बना के ले आओ, और अपने भाई बंदों को भी बुला लो जो तुम्हारी बातों से बड़े इंप्रेस होते हैं और कहते हैं ये बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फिर अल्लाह ताला एक दावा करता है, देखें 24 में फिर दावा है कि फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर तुम ऐसा ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे, क़यामत तक नहीं कर सकोगे, ये दावा सच्चा है क़यामत तक। फ़त्तकुन नार, तो फिर आग से डरो, अल्लती वकूदुहा नासु वल हिजारा, ये वो आग है जिसका ईंधन बंदे तो हैं, इंसान तो वहाँ जलेंगे, वहाँ पत्थर भी जलेंगे। उद्दत लिल काफिरीन, ये इनकारियों के लिए बनाई गई है। तो अगर तुम मुजब्जब हो और किसी शक में हो, तो फिर इम्कान ये है कि तुम बहुत जल्द इनकारी बन जाओगे, ठीक है जी। और कुरान की एक खूबसूरत आदत जो हम यहाँ से सीखते हैं, जैसे ही कोई इंतजार की और खौफ की और डर की आयत आती है, उसके करीब ही बशारत होती है। आयत नंबर 25, वबशिर लजीन आमनु, और खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। अमिलुस्सालिहात पहली दफ़ा आया है कुरान में, और मैंने आपको इसकी भी तशरीह भेजी है, पूरी तफसीर मैंने आपको अमल सालेह की भेजी है, ठीक है जी। याद नहीं है, सुनी नहीं है तो अब सुन लें। अन्न लहुम, ये कि उनके लिए जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। कुल्लमा रुज़िकू मिन्हा, जब कभी वो दिए जाते हैं, मिन समरिन, कोई भी समर, रिस्कन, खाने के तौर पे, खाने की कोई चीज़ वहाँ दिए जाते हैं, कालू, वो कहते हैं हसल लजी रुज़िकना मिन कब्ल, ये चीज़ हमें पहले भी दी गई है। दो बड़े मतलब हैं इस बात के, वह उतु भी मुतशाबिहा, हालांकि वो उससे मिलती जुलती चीज़ दिए गए थे। तो ये जन्नती जो हैं, नंबर एक, जन्नत में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वहाँ पे हमें मोबाइल फ़ोन दे के ये नहीं कहा जाएगा कि ये खाने की चीज़ है। ऐसी उम्मीद है कि जन्नत में मोबाइल फ़ोन नहीं होंगे, मेरी तो ये सिंसेयर उम्मीद है, लेकिन मिसाल मैं दे रही हूँ, जैसे वहाँ पर आपको कोई गेंद देकर या कोई और कोई अजीब सी चीज़ जो खाने की चीज़ दुनिया में नहीं है, वहाँ दे के आपको कहा जाए कि ये खाओ, तो जन्नती कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो जन्नत में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, खाने की चीज़ दी जाएगी तो वो कहेगा ऐसी हमें पहले भी मिली थी। तो दूसरा जो दूसरी इम्प्लिकेशन इसकी है वो ये है कि जन्नती को दुनिया की नेमतें याद होंगी, वो दुनिया में नेमत का इतना शुक्र अदा करेगा और इतना मशकूर होगा, इतना शुक्रगुजार और कदरदान होगा कि उसको जन्नत में भी वो नेमत याद होगी, और वो कहेगा ऐसा हमें दुनिया में भी मिलता था, हालांकि वो इससे मिलता जुलता था। तो जन्नत के फल दुनिया से मुतशाबे हैं, मिलते जुलते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हैं, और हाँ जिसको वो मिलेंगे वो उन चीज़ों का कदरदान होगा। وہ ان چیزوں کو پہچانتا ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے اس میں جوڑے ہیں پاکیزہ. یہاں پہ ایک سوال کا میں مختصر رک کے جواب دوں گی, کیونکہ سوال کیا گیا تھا اور وہ الگ سے جواب بنانا جو ہے وہ میرے لیے بہت مشکل ہے, تو مجھے یہاں پہ وہ جواب دینا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. آیت نمبر 25. سوال یہ تھا کہ ازواج تو جوڑے کو کہتے ہیں, یہ تو مرد بھی ہو سکتا ہے, لیکن متحرہ اینڈ میں لگا کے جو ہے اس کو پاکیزہ عورت بنا دیا گیا ہے, تو پھر عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہے؟ ازواج جوڑے کو کہتے ہیں, متحرہ اس عورت کو کہتے ہیں جو طہر میں ہوتی ہے, یعنی جو ماہواری سے نہیں ہوتی, جس کا وہ منتھلی سائیکل نہیں ہوتا, وہ پاکیزہ ہوتی ہے. طہارت پاکیزگی کو بھی کہتے ہیں. جنت میں ازواج و متحرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مردوں کو پاکیزہ بیبیاں صرف ملیں گی. اس کا مطلب یہ ہے, دیکھیں آگے ہم حضرت آدم کا قصہ جب پڑھیں گے اور پھر سورہ اعراف میں جب پڑھیں گے انشاءاللہ, تو یہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جنت میں مرد اور عورت کی ڈویژن نہیں ہے, جنت میں جینڈرز نہیں ہیں. مرد اور عورت ہیں وہاں پہ, لیکن جو جینڈر ہے, جو ایک جنس ہے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے, یہ تفریق جنت میں نہیں ہے. وہاں پہ ہر کسی کو پاکیزہ جوڑے ملیں گے, اس کو اس کا پاکیزہ پیئر مل جائے گا, جس میں کوئی گندگی نہیں ہوگی, جو خوبصورت ہوگا, خالص ہوگا, بلیسڈ ہوگا, مبارک ہوگا, طہر میں, طہارت میں ہوگا, کوئی گندگی نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ ازواج و متحرہ پڑھ کے نہ مردوں, مرد حضرات کو, بھائی لوگوں کو, نہ ہماری بہنوں کو, خواتین کو, بیٹیوں کو کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت ہے. یہ پاکیزہ جوڑے ہیں, ٹھیک ہے جی, جن میں کسی قسم کی کوئی آلودگی یا گندگی نہیں ہے, اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ ساری باتیں بتا کے اللہ کہتا ہے, اللہ نے بہت سی مثالیں دے دی ہیں نا, اب اللہ اپنی یہاں پہ, یہ ایک ایسی آیت ہے جو یہاں پہ رکھی گئی ہے, اور انسان سوچتا ہے کہ یہاں کیوں رکھی گئی ہے, مچھر کی آیت ہے, مچھر کا ذکر ہے اس آیت میں, لیکن جب میں آپ کو ربط سمجھاؤں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کیوں رکھی گئی ہے. قرآن کا ربط جو ہے نا, یہ اس کے معنی کا اور اس کے ایسنس کا بہت بڑا حصہ ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے, ان اللہ لا یستحیی, اس سے اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے, فما فوقہا, یا جو اس سے اوپر بھی ہو, مثلا مچھر کا پر یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو جو لوگ ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ, وہ علم رکھتے ہیں, اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو لوگ انکاری ہیں, فَيَقُولُونَ, تو وہ کہتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ, اللہ کا کیا ارادہ تھا, اللہ نے کیا سوچا تھا, بہذا مسئلہ, اس مثال سے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں بت مت کی تعلیمات ہیں, اور قرآن میں واللہ عالم کس چیز کی تعلیمات ہیں. اللہ بھلا مچھروں کا کیوں ذکر کر رہا ہے, مکڑیوں کا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے, یضل بہ کثیرا, گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو, وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور اسی کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہے جہاں یہ آیت آئی تھی. آپ کو یاد نہیں ہے تو واپس جا کے ریوائز کریں, بہت امپورٹنٹ حصہ ہے یہ. یعنی کہ ابھی تک جتنی البقرہ ہم نے پڑھی ہے نا, اس میں یہ جو دو باتیں نا, یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, بہت زیادہ ایک کی ٹرننگ پوائنٹ ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے, وَمَا يُذِلُّ بِهِ, اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے, الا الفاسقین, مگر فسق کرنے والے, حد سے گزرنے والے. تو اب ہم سمجھ گئے, انکار نہیں کرنا, نفاق نہیں کرنا, دو منہ والا نہیں بننا, اپنے آپ کو یقین دلانا ہے, اور پھر فاسق نہیں بننا, اللہ کے احکامات میں حد سے نہیں گزرنا, اللہ کی حدود پہچاننی ہے. کون سے لوگ فاسق ہیں؟ الذین ینقصون عہد اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو نقضہ, توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ. وعدہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا, الستو بربکم, آنے والا ہے سورہ اعراف میں. اللہ سے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے, کیوں نہیں یا اللہ, تو ہی ہمارا رب ہے. من بعد میثاقہ, بعد اس کو پکا کرنے کے, اس سے زیادہ ہم کیا پکا کریں. ایک اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, اور پھر ہم اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے. یہ وہ رشتے ہیں، یہ وہ خون کے رشتے ہیں، یہ وہ نسبت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا ماموں، خالہ پھوپھی، نانا نانی، دادا دادی، یہ وہ خون کے رشتے ہیں، وہ انہیں کاٹتے ہیں. اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی خسارے میں ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ بھلا دیا. پھر اللہ دوبارہ کہتا ہے، یہ بھی ایک دعوے کی آیت ہے 28، كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مرے ہوئے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں حیات دی، اس نے تمہیں جگایا، اس نے تمہیں جلایا، اس نے تمہیں اٹھایا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارنے والا ہے، کوئی شک ہے تمہیں، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہاں تک ہم نے تین گروہوں کا بیان مکمل کر لیا، منافقوں کی اور انکاریوں کی مثالیں مکمل کر لی. یہ سارے حصے ہم نے پڑھ لیے نا، ڈیٹیل میں پڑھ لیے، ہم نے ان کے انجام بھی پڑھ لیے اچھی طرح. پھر ہم نے اللہ کے دعوے پڑھ لیے، یہ پڑھا کہ جو اللہ نے دعوے کیے ہیں اور جو اس کو ایک سائیکل بناتے ہیں اور واپس لے کے جاتے ہیں متقیوں کے، انکاریوں کے اور منافقوں کے ذکر کی طرف، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب آگے سے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، پھر وہ اس نے آسمان کا قصد کیا، اور پھر اس نے سات آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور یہاں سے حضرت آدم کی کہانی شروع ہوئی تھی. حضرت آدم کی کہانی بھی میں نے انتہائی ڈیٹیل میں آپ کو پڑھائی ہے، اس لیے یہاں میں بہت سپرفیشلی بتاؤں گی کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک پیچھے آنے والا بنا رہا ہوں، فی الارض خلیفہ، اور یہ بھی میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھایا تھا، جس پہ بعض لوگوں نے مجھے باقاعدہ میسج کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ جی ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں یہ احساس، ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، اور میں نے پھر ان کو کہا کہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں، خلیفہ کا کیا مطلب ہے. اور فرشتوں نے معصومیت سے کہا کہ کیا تو وہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور یہاں خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تو تسبیح کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ کیا جانتا تھا جو فرشتے نہیں جانتے تھے؟ اللہ نے اپنا علم آدم کے ساتھ شیئر کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اس نے آدم کو نام رکھنے سکھائے، سب کے سب، سارے نام سکھا دیے. ہاں سردی ہے، اف اللہ کیا گلابی سردی ہے، اور کیا زبردست رومانٹک موسم ہے، اور کتنی پیاری بارش ہے، اور دسمبر کی دھوپ تو سینک کر میں تو ایسی بن جاتی ہوں. کیسی باتیں ہم کرتے ہیں نا، کیسی کیسی سچویشنز کے ہم نام رکھتے ہیں. اس نے تو میرا دل ہی بس ایسے یوں کر دیا، اور میرا تو دل ہی دب گیا اللہ، اور آئس کریم کھا کے تو میرا دل کھل جائے گا اور میں خوش ہو جاؤں گی. ہر سچویشن کا ہمیں نام رکھنا آتا ہے، ہر سچویشن کو ایک جامہ پہنانا ہمیں آتا ہے. یہ وہ علم الاسماء ہے جو خالق نے ہمیں سکھایا ہے. اور کس مقصد کے لیے سکھایا ہے؟ اگر ہم وہ یاد رکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا. کہ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. یہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن بنایا اور پھر انسان بنایا اور پھر اس کو بیان کرنے کی طاقت دی. کیوں دی؟ تاکہ وہ قرآن کو بیان کرے، وہ اس کے مطابق عمل کرے، اس کو اپنی ترجیح بنائے، وہ اس کے عمل میں یہ نظر آئے، یہ ہے اس کا لائحہ عمل. تو اس نے آدم کو یہ علم سکھایا اور پھر اسے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. فرشتوں کو کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. فرشتوں نے کہا یا اللہ، انہوں نے اپنی مجبوری بتائی، سبحانکا، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب سے، سب علیم اور حکیم تو ہی ہے. پھر आदम की बर्तरी बयान की गई। काल या आदम अम्बे ओहुम बे अस्माहिम, बताओ इनको इन चीज़ों के नाम। फलम्मा अम्बा अहुम बे अस्माहिम, फिर जब आदम ने बता दिए उनको उन चीज़ों के नाम, काला अल्लाह ने कहा, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, इन्नी आलमु, ये कि मैं जानता हूँ, गैब अस्समावाति वल अर्द, आसमानों के और ज़मीन के गैब, वह आलम हो और मैं जानता हूँ, माँ तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, वह माँ कुन तुम तक तुमून और जो तुम छुपाते हो। अब छुपाते तुम क्या हो, वो मासूम फरिश्ते तो कुछ नहीं छुपा रहे थे, तो यहाँ पे एक तीसरी मखलूक थी जिसके अंदर छुपा हुआ गुरूर और जिसके अंदर छुपी हुई नफरत अल्लाह ने निकालनी थी इसी आदम के जरिए। हम इस जिंदगी में जो भी करते हैं वो हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, वो हम अल्लाह की तख्लीक का हिस्सा होने की वजह से कर रहे होते हैं। किसी को अच्छा पहुंचना होता है, किसी को उसके किए का अंजाम पहुंचना होता है, किसी को कोई सबक पहुंचाना होता है, किसी को ठीक होने का एक मौका देना होता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदों से ये सारे काम लेता है। वइज़ कुलना लिलमलाइकति इस्जुदू लिआदम, फिर हमने फरिश्तों को जब हमने कहा कि झुको इस आदम के सामने सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। पहली दफ़ा ये नाम आया बालासा यानि मायूस, रांदा दरगाह, मलाऊन, धुतकारा हुआ, अबा उसने इनकार किया, वस्तकबरा और तकबर किया, वकान मिनल काफिरीन, तो दो बुनियादें इंसान के इनकार की और अल्लाह से दूर होने की यही हैं कि वो इनकार करता है अल्लाह के हुक्म का। क्यों? क्योंकि वो तकब्बुर करता है, वो अपने आप को अल्लाह के हुक्म से बड़ा समझता है। और यहाँ पे फिर बयान है कि हमने कहा कि ए आदम, तू और तेरी जौज जन्नत में रहें, खाएं पिएं, खुश रहें, जहाँ से जो मर्जी है करते रहें, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, और हाँ इस हद के करीब नहीं जाना, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना तुम फिर ज़ालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनको धोखा दिया, ये भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। वो बयान है कि फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, तो शैतान ने उनको फुसलाया और उनको वहाँ से निकाल दिया जहाँ पर वो थे। और वो पूरा बयान सूरह आराफ़ में इंशाअल्लाह आ रहा है। और यह है कि ज़ाक़ा शजरा, कि इन्होंने चखा था उस शजर को, वक़ुलनाह बितु, और अल्लाह ने कहा कि उतर जाओ, तुम में से बाज़ों के दुश्मन हैं। फिर आदम ने वो कलमात अपने अल्लाह से सीख लिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये दुआ है, तो अल्लाह ने वो कबूल की उनकी तौबा, फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला, तवज्जो देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ने कहा, यानी एक और दर्जे से उनको उतारा गया एक प्लान के तहत, कि अब यहाँ से सब के सब उतर जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम, बस जब तुमको पहुँचेगी मिन्नी मेरी तरफ से हुदन कोई हिदायत, फ़मन तबिअ हुदाया, देखें वापस हिदायत पे बात चली गई ना, हुदन लिलमुत्तकीन की बात हुई थी ना, जब तुम्हें कोई हिदायत मेरी तरफ से पहुँचेगी, फ़मन तबिअ हुदाया, तो जिसने मेरी बात मानी, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, तो उन पर कोई डर नहीं है, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो कभी हुज़न करेंगे, ना ही उनको कभी नॉस्टैल्जिया होगा, जो चीज़ चली गई है उस पर कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, ना वो किसी चीज़ से डरेंगे, ना उन्हें आने वाली चीज़ का खौफ होगा, कोई गम होगा, और ना ही उन्हें गुजरे हुए वक्त का कोई हुज़न होगा। वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने इनकार किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और छुटलाया हमारी आयात को, मुनाफिक बन गए, उलाइका यही वो लोग हैं, अस्हाबुन नार, जो आग के साथी हैं, हुम फीहा खालिदून, हमेशा उसमें रहने वाले हैं। तो जो आहिस्ता 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 करके सूरह अल-बकरा की पहली 39 आयात आपको हमने पढ़ाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका खुलासा मैंने आपको पहुंचा दिया है। ये खुलासा है, इस खुलासे को जहन में रखना है, क्योंकि आगे जिक्र शुरू हो रहा है आयत नंबर 40 से बनी इसराइल का, और ये एक इट्स अ स्टडी इन इट्स ओन, ये दुनिया की हिस्ट्री की स्टडी है, ये इंसान की हिस्ट्री की स्टडी है। इसीलिए मैंने आपको रिवीजन कराई, अभी तक जितना सबक गुजरा है कि हज़रत आदम का जिक्र कहाँ है, मुनाफ़िकों का जिक्र है, इनकारियों का जिक्र है, ईमान लाने वालों का, मुत्तकियों का जिक्र है, मुत्तकी क्या करते हैं उसका जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, अल्लाह के दावे हैं। ये 39 आयात की आपकी रिवीजन हो गई है। आइंदा सबक जो है इंशाल्लाह बनी इसराइल से शुरू करेंगे, और अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उसको पढ़ने वाला, उस पर अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला, उसको अपनी तरजीह बनाने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन।